चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरज्जिदे वन्दित्तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुदकेवलीभणिदम्।
ये कुंदकुंद आचार्य भगवान का समय सार है और इसके पुण्य पाप अधिकार के हम 151 नंबर की गाथा पर आए हैं। यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है और ये बात बताने के लिए उन्होंने ज्ञान के लिए अलग अलग शब्दों का यहाँ इस्तेमाल किया है, अनेक बोल बताए हैं। उसमें से पहले तो परमार्थ यानी परम पदार्थ, फिर समय, फिर शुद्ध, फिर केवली, फिर मुनि, ज्ञानी, इस तरह से अनेक प्रकार से उनका वर्णन किया है। उसमें से हम अभी पांचवें नंबर जो है मुनि, उस अपेक्षा से वो देख रहे थे। देखो यहाँ पर जो सम्यक ज्ञान जो है, जो अपने आत्मा का अनुभव हो रहा है, ऐसा जो ज्ञान है, उस ज्ञान को ये अलग अलग नए नए नाम दिए हैं। ज्ञान अन्य पदार्थों को जाने और अपने को नहीं जाने, ऐसे ज्ञान को ये विशेषण नहीं दिए हैं। लेकिन अपने आत्मा का अनुभव करने वाला ऐसा जो ज्ञान है, ऐसे ज्ञानी को अलग अलग नामों से यहाँ अभिहित किया गया है। तो यहाँ मुनि यानी कौन, के जो मनन स्वरूप है, अपने स्वरूप का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उनको यहाँ मुनि कहा गया है। तो ये बात हम देख रहे थे। अभी पृष्ठ क्रमांक 89 पर हम आए हैं।
देखो त्रिकाली तो मनन स्वरूप है ही, परंतु जो उसमें एकाग्रता करने वाली पर्याय है, मनन रूप है, ज्ञानमय है, उसको भी यहाँ मुनि कहा है। ये जो पैराग्राफ है नया दूसरा, उस वहां से पढ़ते हैं। भगवान आत्मा शुद्ध छे, एना अनंत गुणों शुद्ध छे, आवा अनंत गुणों नो धरनारो एक चैतन्य महाप्रभु एकनुज मनन वाते एकनीज एकाग्रता ते मुनि छे। ये जो एकाग्रता रूप शुद्ध परिणति है, उस पर्याय को ही यहाँ मुनि कहा है। जो आ मुनि अने आ मोक्ष मार्ग कहो, पन पंच महाव्रत पाले अने नग्न रहे माटे मुनि एम नथी कहूं। अपने शुद्धात्मा में जो लीनता रूप जो अवस्था है, ज्ञान को अपने अंदर एकाग्र कर दिया है, वो जो पर्याय है निर्मल परिणति, उसको मुनि कहा है। शुद्धोपयोग रूप ही मुनि अवस्था है। सूक्ष्म वाच छे भाई, एकलु त्रिकाल नित्य निरावरण अखंड एक शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण जे निज परमात्म द्रव्य तेनु मनन अर्थात तेमा ज्ञान नु एकाग्र थऊं ते मुनि छे। ये त्रिकाल अखंड ये जो पूरा ही वर्णन किया है, वो तो ज्ञान स्वरूप ज्ञानमय है ही है, उसमें एकाग्रता करने वाली जो ज्ञान की पर्याय है, उसका जो मनन है, उसको यहाँ मुनि कहा है। આ મનન માત્ર ભાવ સ્વરૂપ મુનિની વ્યાખ્યા છે. તેને મુનિ કહીએ, શુદ્ધ કહીએ, પરમાર્થ કહીએ, કેવળી કહીએ વા સમય કહીએ, એ બધું એક જ છે. એ સભી જો અલગ અલગ શબ્દ હૈ, વો એક હી જો જ્ઞાન કે લીએ ઉસકે વિશેષણ રૂપ સે આયે હૈ. કૌન સી જ્ઞાન કી બાત હૈ યહાં? જો ત્રિકાલી અપને ભગવાન આત્મા મેં એકાગ્ર હુઆ હૈ, ઉસ જ્ઞાન કો યહાં અલગ અલગ નામો સે બતાયા હૈ. હવે છઠ્ઠો બોલ. પોતે જ જ્ઞાન સ્વરૂપ હોવાથી જ્ઞાની છે. લ્યો, જ્ઞાનની પ્રકટતા માટે પોતે જ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. પોતાનું ત્રિકાળ જ્ઞાન સ્વરૂપ જે છે, એમાંથી જ જ્ઞાનની પરિણતિ આવે છે. ક્યા કહા? આત્મા સ્વયં જ્ઞાન સ્વરૂપ હૈ. કબ? ત્રિકાલી. ઓર ઉસમેં સે હી જ્ઞાન કી પરિણતિ આને વાલી હૈ. આત્મા સ્વયં હી જ્ઞાન રૂપ પરિણત હો જાતા હૈ. અને અપને મેં એકાગ્ર રૂપ હોને વાલી વો પરિણતિ જો હૈ, વો આત્મા મેં સે હી પ્રકટ હુઈ હૈ. તો કહેતે હૈ, એને કોઈ અન્યની સહાય કે મદદની અપેક્ષા એટલે જરૂર નથી. કોઈ દૂસરા આકર સમજા દેવે યા અપની જ્ઞાન કી પર્યાય કો અંદર લે જાય એસી બાત નહીં હૈ. આત્મા સ્વયં હી અપને મેં એકાગ્ર રૂપ હોકર પરિણત હો જાતા હૈ. એની પર્યાય એટલે પરિણતિ. આત્મસન્મુખ સ્વસન્મુખ હોતા જ શુદ્ધ છે, જ્ઞાની છે. એને એ પરિણતિ સ્વસન્મુખ કરને કે લીએ ભી અન્ય કિસી કી જરૂરત નહીં હૈ. આત્મા કી સ્વયં કી પર્યાય અપના સ્વસન્મુખ લક્ષ્ય કરતે હુએ હી પ્રકટ હો જાયગી. એસે આત્મા મેં હી કપેસિટી હૈ. અભિનયો કી ભાષા મેં કહેના તો આત્મા મેં એસા ધર્મ હૈ. નિયમસાર મેં ભી એસી બાત આઈ થી કે વો તો વિતરાગ સ્વભાવ હૈ ઓર વો ચારિત્ર રહેને અપને મેં હી લીન રહેને રૂપ આત્મા કા સ્વભાવ હૈ. એસી બાત આઈ થી નિયમસાર મેં. ક્યા કહેતે? દેખો, એની પર્યાય એટલે પરિણતિ. આત્મસન્મુખ સ્વસન્મુખ હોતા જ શુદ્ધ છે, જ્ઞાની છે. પોતે જ જ્ઞાન સ્વરૂપ હોવાથી જ્ઞાની છે. અહીં શાસ્ત્રોનું ઘણું જ્ઞાન એટલે ભણતર હોય માટે જ્ઞાની છે એમ નહીં, પણ એની પરિણતિ જ જ્ઞાન સ્વરૂપ હોવાથી જ્ઞાની છે. એ તો આત્મા કી પરિણતિ હિ જ્ઞાન સ્વરૂપ હૈ, ક્યોંકિ જ્ઞાન સ્વરૂપ એસે આત્મા મેં એકાગ્ર હોતે હુએ વો પ્રકટ હુઈ હૈ. જેમ વસ્તુ ત્રિકાળ જ્ઞાન સ્વરૂપ આનંદ સ્વરૂપ છે, તેમ એની પરિણતિ એની વ્યક્તતાનો અંશ પણ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે અને તેથી જ્ઞાની છે. અહીં વ્યક્ત અંશ જે પર્યાય તે જ્ઞાનમય છે, પણ રાગમય કે વિકલ્પમય નથી, તેથી જ્ઞાની છે એમ કહ્યું છે. જો હે, વાત તો હો રહી જ્ઞાન કી, વો જ્ઞાની મેં સે વો રાગમય નહીં, એ બાત નિકાલ દી યહાં પર. અહો, ગાથાએ ગાથાએ ને શબ્દે શબ્દે કેટકેટલા ભાવ ભર્યા છે. આ સમયસાર તો જગતનું અજોડ ચક્ષુ છે. કહે છે, એક સમયમાં કેવળ જ્ઞાન અને અનંત આનંદની લબ્ધિ પ્રકટ કરી શકે એવા અનંત સામર્થ્યવાળો તું ભગવાન છો. વો હૈ પણ ઉસકા વિશ્વાસ નહીં. અભી બાત આઈ થી ને પહેલે, મૂળ મેં ક્યા હૈ? યે જો ઉપદેશ હમ સીખતે હૈ ઉસ પર વિશ્વાસ હો તો. યે આજ્ઞા સમ્યક તો નામ કા સમ્યક તો આપને સુના હૈ કભી? સમ્યક તો કે અલગ અલગ ભેદ બતાએ જાતે હૈ, ઉસમે એક આજ્ઞા સમ્યક હૈ. જિનેન્દ્ર ભગવાન ને યે બતાયા ના ઉપદેશ, બિલકુલ વો 100% સત્ય હૈ. એસા કરકે ઉસકો બિલકુલ વિશ્વાસ કર લેતા હૈ તો ઉસકો જલ્દી સમ્યક દર્શન હોતા હૈ. યની વો આજ્ઞા માન લી ઓર ઉસકો સમ્યક દર્શન, ક્યોંકિ ઉસકા બિલકુલ ઉસ પર ભરોસા હૈ. ભગવાન ને યા ગુરુ ને બતા દિયા કે તું સ્વયં પરમાત્મા સ્વરૂપ હો ઓર અપને મેં વો પરમાત્માપના પ્રકટ કર સકતા હૈ, તો બિલકુલ ઉસ પર ભરોસા હોકર ઉસને માન લિયા તો ઉસકો સમ્યક દર્શન હો ગયા જલ્દી. તબ યહાં ક્યા કહેતે હૈ? કે રાગમય વિકલ્પ નહીં, નીચે નીચે હમને પડ્યા હતા કે એક સમયમાં કેવળ જ્ઞાન અને અનંત આનંદની લબ્ધિ પ્રકટ કરી શકે, એને પર્યાય મેં અનંત જ્ઞાન ઓર અનંત આનંદ પ્રકટ કરે, કિતને કાલ મેં, એક સમય મેં, તો એસે આત્મા મેં સામર્થ્ય ભરી પડી હૈ, તો એસા થોડા કેવલ જ્ઞાન ઓર અનંત આનંદ ઉત્પન્ન હોને પર અંદર કી સામર્થ્ય થોડી કમ હોગી કે નહીં, ક્યોંકિ અનંત કાલ તક વો પ્રકટ હોને વાલા હૈ. તો કહેતે એસા નહીં હૈ, વો સામર્થ્ય તો ઉતના હી ઉતના બના રહેતા હૈ ત્રિકાલ. હર સમય યે જ્ઞાન આનંદ કી પર્યાય હોતે 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 અનંત કાલ ભી બીત જાયેગા, ક્યોંકિ હમ દેખતે અભી કોઈ સિદ્ધ ભગવાન હૈ વો અનંત કાલ પહેલે સિદ્ધ હુએ હૈ, તો વહાં સે લેકર અભી તક ઉનકી વો કેવલ જ્ઞાન કી ઓર અનંત આનંદ કી પર્યાય ચલ રહી હૈ, તો ઉનકા સામર્થ્ય કુછ કમ હો જાયેગા કે નહીં હો જાયેગા, યે સવાલ હૈ ને. તો કહેતે વો સ્વભાવ ઉસી કો કહેતે વો જો અખૂટ હૈ અમર્યાદિત હૈ ઓર ત્રિકાલ રહેતા હૈ. બાપુ, તું એને અલ્પ અને અધૂરો કેમ માને છે? અમને અપને પણ અપના મેં કોણ હું કિસમે સ્થાપિત ક્યા હૈ અધૂરેપણ મેં અલ્પ જ્ઞાન મેં, તો વો માનને કો હી તૈયાર નહીં કે મેં કેવલ જ્ઞાન સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા હું. તું એને અલ્પ અને અધૂરો કેમ માને છે? એનું જે પરિપૂર્ણ જ્ઞાન અને આનંદનું સ્વરૂપ છે તેની તદ્રુપ પરિણતિ થતા તે જ્ઞાની છે. જબ યહ જીવ સ્વીકાર કરેગા કે મેં જ્ઞાન ઓર આનંદ સ્વરૂપ હું ઓર ઉસમે એકાગ્ર હો જાયેગા, તો પર્યાય મેં ભી વો આનંદ કી ધારા ઓર જ્ઞાન ચલેગા ઉસકા, તબ ઉસકો જ્ઞાની કહા હૈ. જ્ઞાની એટલે બહારનું ખૂબ જાણે અને શાસ્ત્રો ઘણા ભણ્યો હોય. પેજ કહા ગયા? એક પેજ આગે ગયે. એમ નહીં, ક્યા કહા, એને બહોત શાસ્ત્રો કા અભ્યાસ કિયા હૈ ઇસલિયે ઉસકો જ્ઞાની કહા, યે બાત યહાં નહીં. પણ જ્ઞાન સ્વરૂપના મગ્ન એટલે લીન જે મોક્ષ માર્ગરૂપ પરિણતિ છે તે જ્ઞાની છે. એને હમ ભી જ્ઞાની શાસ્ત્ર પઢને સે નહીં હોગે, તો અપના જો જ્ઞાન સ્વરૂપ હૈ ત્રિકાલ જ્ઞાન સ્વરૂપ હૈ જિસકી મહિમા હમ રોજ રોજ ગાતે હૈ પઢતે હૈ સુનતે હૈ, તો ઉસ જ્ઞાન સ્વરૂપ મેં જબ મગ્ન હો જાયેંગે લીન હો જાયેંગે, તો વહી મોક્ષ માર્ગરૂપ પરિણતિ હૈ ઓર ઉસકો હી જ્ઞાની કહા હૈ. મોક્ષ માર્ગની પરિણતિ જ્ઞાન સ્વરૂપ એટલે સ્વસ્વરૂપ હોવાથી તેને જ્ઞાની કહે છે. એ જ્ઞાન કે હી દ્વારા સારા મોક્ષ માર્ગ શરૂ હોને વાલા હૈ, ક્યોંકિ જ્ઞાન હી પહેલે નિશ્ચિત કરેગા, નિર્ણય કરને વાલા ભી જ્ઞાન હૈ. સ્વ કોણ હૈ, પર કોણ હૈ, મેં કોણ હું, યે નિર્ણય કરને વાલા ભી જ્ઞાન હૈ. ઓર જિસકો સ્વ કા નિર્ણય ક્યા તો ઉસમે એકાગ્રતા હોને વાલા કાર્ય ભી જ્ઞાન હી કરેગા, તો દર્શન ક્યા કરેગા, ઉસ પર સ્ટેમ્પ લગાયેગા, સ્વીકાર કરેગા. યે સ્વીકાર કરને માત્ર સે હી ઉસ જ્ઞાન કો અભી હમ સમ્યક જ્ઞાન કહે દેંગે, તો ઉસકો હમ ઉસ જીવ કો ઉસ જ્ઞાન કે પર્યાય કો ભી જ્ઞાની કહેને મેં આયા યહાં પર. હવે સાતમો બોલ કહે છે, સ્વના ભવન માત્ર સ્વરૂપ હોવાથી સ્વભાવ છે. ભવન યાને ઉસરૂપ હોના. સ્વભાવ કેમ કહો કયો? તો કહે છે, શુદ્ધ પરિણતિ સ્વના ભવન માત્ર છે. એ સ્વભાવ કિસકો કહા હૈ? જ્ઞાન કી પરિણતિ કો સ્વભાવ કહા હૈ. એ ત્રિકાલી સ્વભાવ કી વાત નહીં હૈ, જિસકો હમને કેવલી કહા, મુનિ કહા, જ્ઞાની કહા, પરમાર્થ કહા, શુદ્ધ કહા, ઉસકી યહાં બાત હો રહી હૈ. ત્રિકાલ સ્વભાવ જૈસા હૈ ઉસમે જ્ઞાન જબ લીન હોતા હૈ તો ઉસકી જો પરિણતિ હૈ સ્વ કા ભવન, ભવન યાને ઉસરૂપ હોના, તો શુદ્ધ પરિણતિ સ્વના ભવન માત્ર છે એટલે ચૈતન્યના ભવનરૂપ છે, પણ રાગના ભવનરૂપ નથી. વો રાગરૂપ નહીં હો રહી હૈ, ચૈતન્યરૂપ હો રહી હૈ પરિણતિ. રાગ તો પર છે, રાગનું ભવન એમાં છે નહીં. ભાઈ, આ તારા હિતની વાત છે. એકાંચે એકાંચે એમ કહીને એને કાઢી ન નાખ. એ બસ નીચે નીચે કી વાત હૈ, એકાંતે એકાંતે વ્યવહાર તો કુછ કરના પડેગા ના, વો બાત યહાં મત નિકાલે શકે થે, ક્યોંકિ યહી એકમાત્ર મોક્ષ માર્ગ હૈ. ક્યા હૈ મોક્ષ માર્ગ? જો ત્રિકાલી સ્વભાવ હૈ ઉસકો જાનકર ઉસી મેં એકાગ્ર હો જાના હી મોક્ષ માર્ગ હૈ. ઓર ઇતની આસાન મેં આસાન ચીજ હૈ, ઇસકે લિયે દૂસરા કુછ નહીં કરના હૈ. तो लोगों को ऐसा ही कुछ करेंगे तो पाएंगे क्या करना, वो ध्यान कैसे करना, क्या करना। अरे ये निर्णय करके ज्ञान उसी में लीन हो जाए, बस यही ध्यान है और कुछ अन्य प्रोसेस वहां है ही नहीं है। क्या कहते देखो भाई, आ तारा हितनी बात छे, एकांचे एकांचे एम कहीने एने काढ़ी न नाक। भाई आ समझवानो अत्यारे अवसर छे। जुओ ने जुआन जोध होय तेने पण जो जोतानामां जो जोतामां आयुष्य पूरु थे, समय मात्रमां देह छूटी जाय छे। देहनी स्थिति केटली, हमना अमे निरोगी छे, अमने क्यांय नखमां पण रोग नथी एम तू माने छे, पण भाई एने फरवाने केटली वार, मात्र एक समय हम देखते न, कुछ रोग नहीं कुछ नहीं, बैठे बैठे बस
खासियत है,
हार्ट अटैक आया जो कुछ है, अरेस्ट हुआ खत्म। और हम तो ऐसे ही मान ले, ऐसे प्लानिंग करते कि जैसे हम अमर ही रहने वाले हैं। जो जो हमारी प्लानिंग चलती है अने समय दर्शन थवामां पण एक समय, देह छूटवामां जेम एक समय, तेम समकित थवामां पण एक समय छे। आ देह छोड़ीने भाई बीजे समय क्यां जईश? देखो ये तो कौन जीव कैसे परिणामों में कहाँ की आयु बांधेगा, कहाँ चला जाएगा, पूरा लोक कितना बड़ा है कहाँ जाएगा वो पता नहीं, ऐसा कहते ना। अभी हम क्या है? अरे हम तो देव में ही जाने वाले, जैसे गारंटी लिख के लाए है। वहां भी गए तो क्या फायदा, जो कार्य अब हो सकता है ये परिणामों का भरोसा नहीं रखना। अभी तो शास्त्र सुनने के परिणाम है, मंद कषाय रूप परिणाम है, वो समझ में आ रहा है। अभी ये ज्ञान आगे वही ऐसा ही चलता रहे, जितना जहां तक पढ़ा है अभी समय सार पढ़ा है, वहां जाके प्रवचन सार पढ़ेंगे या ऐसा नहीं होगा? किसी बच्चे ने हमारे पूछा था, ये जन्म मरण करते तो फिर दोबारा वो एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा? मैंने बोला हाँ दोबारा एबीसीडी पढ़ना
पड़ेगा।
हाँ
आज जिनका फोन आया
था ना, काले काले ने भी पूछा था और हमारे बच्चों ने भी किसी ने पूछा था। वो काले नाम के एक है, अपने सीडी सुनते हैं सब, छोटे गांव में, बहुत छोटे गांव में रहते हैं।
मैंने जिक्र किया था उनके बारे में कि वो बेड रिडन है, कहीं घूम फिर नहीं सकते हैं,
घर के बाहर नहीं जा सकते,
घर के बाहर भी नहीं जाते हैं, तो वो हमारे यहाँ से सीढ़ी मंगाते हैं। तो उनको ऐसा लगा कि भाई क्या अभी इस भाव में मेरा पूरा कुछ काम हो जावे, नहीं होवे तो अगले भाव में जाऊं तो फिर पहले से वहां सीखना पड़ेगा, बिल्कुल सीखना पड़ेगा, तो फिर क्या फायदा, सम्यक दर्शन करो साथ में ले जाओ, कुछ नहीं सीखना पड़ेगा। तो मैं जानता हूँ ये बात वो आगे जाके सुनने वाले हैं, क्योंकि समय सार की भी सीढ़ी वो ले रहे हैं।
आज बहुत प्रश्न थे उनके, वो खुद कह रहे थे अभी मैं इतना समझता हूँ, पहले तो कुछ नहीं समझता था, एक 3-4 साल पहले कुछ नहीं समझ में आता था, अभी तो 90% तो समझ में आता है सब कुछ, ये आपका उपकार है। हमने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आपके ज्ञान की ऐसी योग्यता है, तो जो योग्य तो निमित्त क्या सहज मिल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो यानी वो घर के बाहर नहीं, अपने छोटे से गांव में घर में रहकर अभी इतना यानी कह सकते। मैंने पूछा आपको, आपको स्वयं को क्या पता था इसे 4 साल पहले, किसी कोई बता देता आपको कि आपको इतना सारा ज्ञान होने वाला है और इतना सारी समझ आ जाए, ज्ञान होने नहीं समझ, उसमें से जो मर्म है वो समझ में आना, तो कहते मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था और आज इतना आश्चर्य होता है। और अभी ऐसा दुख लगता है कि कितना काल हमने बेकार बिताया, हमने बोलो ये पर्याय अभी होनी थी, ये उसके बारे में भी सोचने से कुछ नहीं फायदा। हमें ऐसा लगता है ना जब सच बात समझ में आती है, पहले क्यों नहीं समझा, ऐसा विकल्प आता है ना बीच में, परंतु वो समझने वाली पर्याय भी तभी होनी है जब होनी है।
नहीं ये सबकी बात है, कोई विशेष व्यक्ति की बात नहीं है, जब स्वामी जी को हमने सुना था और अंदर से ऐसे गदगद हो गए थे तो सोचा था कि अरे मैंने गलती की, मैंने शादी की, नहीं करता तो मैं यही रहता। ये शादी के बाद 7 साल के बाद ये मेरे मन में विचार आया था, जो हुआ सो हुआ ना, शादी कोई नड़ाती नहीं अड़ाती नहीं है, हम ही अटकते हैं कि अभी तो मैं सब क्यों चलो आगे
देखो आ देह छोड़ी ने भाई बीजे समय क्या जाइस, तारा स्वभाव मात्र जे परिणाम छे ते प्रकट करियो हशे, तो ज्यां जाइस त्यां तू स्वभाव मां छे। देखो बाह्य कोई गति है, कौन सा काल है, कौन सा क्षेत्र है, उससे कुछ लेना देना नहीं। स्वभाव में हम एकाग्र हो जाएंगे, स्वभाव की पहचान हो जाएगी, तो जहां जाएंगे वहां स्वभाव तो है ही, हम स्वयं है। श्रीमद ने कोई एक बार पूछो तो के श्री कृष्ण हमना क्या छे, तो श्रीमदे कहूं ये आत्मा ना स्वभाव में छे। ते एम जाने के कोई गति में छे एम कहशे, पण भाई समकिती पुरुष जहां होय त्यां स्वभाव में छे, कोई गति में छे एम परमार्थे छे ज नहीं। ये तो आनंद अने ज्ञान ना स्वरूप ना परिणमन में छे, जे विकल्प आवे एमा ए नथी।
डॉक्टर साहब आपके प्रश्न का उत्तर है इधर।
कोई समकीती नरक मा होय अने त्यां दुख थाय, अनगमानो भाव आवे, छता ते एमा नथी। ए राग से उनकी भिन्नता चल रही ना, अपने संयोगों से, राग से, निमित्त से, सब उनकी भिन्नता हर समय उनके ख्याल में है। देखो ए तो स्वना भवन मात्र जे स्वभाव भाव चैतन्य भाव छे एमा छे। समयसार कलश टीका कलश 31 मां आवे छे के मिथ्या तो परिणति नो त्याग थता, शुद्ध स्वरूप नो अनुभव थता, साक्षात रत्नत्रय घटे छे। समकीति ने थोड़ो पण स्वरूप स्थिरता नो अंश चौथे गुणस्थाने आवे छे। मिथ्यात्व अने अनंतानो बंधी कषाय मटता ते निज घरमां थोड़ो स्थिर थयो, ए अपेक्षाए समकीति पण स्वभाव मात्र छे। जहां ये शास्त्रों में बात आती है अधिक स्थिरता की, मुनि अपेक्षा से ज्यादा करके आती है, परंतु वही बात पांचवे वाले को और चौथे वाले को भी लागू हो जाती है। तम्मा ठिदा सहावे,
कि तम्मी चाहिए।
हाँ,
मूल में देख लो।
हाँ हाँ, तम्मी
पृष्ठ क्रमांक
83। तम्मी ठिदा सहावे, अच्छा है बता दिया। क्या कहते
हैं, यहाँ तम्मा लिखा है वो।
हाँ, तम्मी करना उसको, तम्मी ठिदा सहावे एटले स्वना भवन मात्र होवाथी स्वभाव छे एम एक अर्थ कर्यो। एनो बीजो अर्थ हवे कहे छे, स्वतः एटले पोताथी ज चैतन्यना भवन मात्र स्वरूप होवाथी सद्भाव छे। पर्यायमां रागना होवानो अभाव अने चैतन्यना होवानो सद्भाव, ए सद्भाव छे। जेवो स्वभाव छे तेवू थऊं एनुं नाम सद्भाव छे। ए भवन की बात आई थी ने पहले, स्वभाव जैसा स्वभाव है वैसा पर्याय में होना, उसको यहाँ सद्भाव कहा है। एक अर्थ तो स्वभाव कहा और दूसरा ही उसी को अभी यहाँ सद्भाव कह रहे हैं। एक जैसा स्वभाव है वैसा पर्याय में होना उसको सद्भाव कहा, और राग का अभाव कहा। कारण के जे स्वतः होए ते सत्स्वरूप ज होए, जेवु स्वतः स्वरूप त्रिकाणी छे एवो ज एनो चैतन्य परिणाम मोक्षनो मार्ग पण स्वतः होवाती सद्भाव छे। ये भी किसी ने कराया नहीं, वो स्वयं उस रूप परिणत होता है। एने कोई व्यवहार नहीं के निमित्त नहीं अपेक्षा न थी, व्यवहार करते करते ये निश्चय प्रकट होगा ऐसी बात नहीं है, राग करते करते वितरागता प्रकट होगी ऐसी बात नहीं है, तो वो स्वतः उस रूप परिणमित होता है, ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। आवी बात छे। हवे कहे छे आ प्रमाणे शब्द भेद होवा छता वस्तु भेद नथी। कौन कौन से शब्द भेद देखे हमने? हाँ, परमार्थ, हाँ, शुद्ध, केवली, मुनि, ज्ञानी, स्वभाव और सद्भाव। तो नाम जुदा जुदा छे पण वस्तु एक ज छे। शब्द भेद सात बोल थी कया अने एना आठ अर्थ कर्या। ये स्वभाव को भी लिया ना उसमें, स्वभाव और सद्भाव ऐसे दो अर्थ किए उसमें से। पण मोक्ष मार्गनी परिणति तो एक ज प्रकारनी छे। मोक्ष मार्ग तो एक ज छे, उसको बताने वाले शब्द अलग अलग यहाँ प्रस्तुत किए उन्होंने। वस्तु भेद नथी, वस्तु एक ज छे, मोक्ष मार्ग एक ज छे। अब जो हमने भावार्थ पढ़ा था उस पर प्रवचन देखते हैं। पढ़ा था ना भावार्थ यहाँ? मोक्षनु उपादान तो आत्मा ज छे। मोक्षनु मूल उपादान, शुद्ध उपादान आत्मा ज छे। वड़ी परमार्थे आत्मानो ज्ञान स्वभाव छे। ज्ञान छे ते आत्मा छे अने आत्मा छे ते ज्ञान छे। दोनों ओर से सिद्ध कर रहे हैं। आत्मा ज्ञान है और ज्ञान आत्मा है। सुना है कहीं पर? हाँ, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। आत्माना बधा गुणों में ज्ञान गुणनी आ विशेषता छे के ज्ञान पोते पोताने जाने अने परने पण जाने छे। ये खास गुण है ना आत्मा का। परने ने अन्य गुणों को जानने वाला भी ज्ञान है। तो ज्ञान अपने को भी जानता है और ज्ञान पर को भी जानता है। विकल्प राग बिना मात्र जाने एवो एनो स्वभाव छे। ये जानने का स्वभाव है। राग है वो ज्ञान का नहीं है। वो राग जो है वो ज्ञान से भिन्न है। तो क्या कहते? विकल्प विना जाने एवो ज्ञान नो स्वभाव छे तथा विकल्प पूर्वक जाने एवो पण एवो स्वभाव छे। देखो इसमें ये श्लेष आ गए विकल्प शब्द पर। एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं। तो यहाँ कहते विकल्प विना जानता है और कहते विकल्प विकल्प करके जानता है। यानी क्या? विकल्प ने राग बिना जाने ऐसा स्वभाव है एक बात, और विकल्प का ही दूसरा अर्थ है भेद करके जानना। तो ज्ञान का नाम ही सविकल्प है। ज्ञान कौन से ज्ञान सविकल्प है? हमारा क्या? केवली का? सभी, क्योंकि साकार कहो या सविकल्प कहो ज्ञान जो है वो भेद करके, क्योंकि हम केवल ज्ञानी को, केवल ज्ञानी किसको कहते? सर्व द्रव्य गुण पर्यायों को जाने। तो वो भेद करके अलग अलग भी जानेंगे, एक साथ तो जान ही रहे एक समय में, परंतु सबको भिन्न भिन्न जान रहे हैं ना। तो ये भिन्न भिन्न जानना, तो ये भेद करके जानना, या एक ही वस्तु में उसके जो अनंत गुण है, उसके जितने प्रदेश है, सबको अलग अलग भिन्न भिन्न जानना, जितने अविभाग प्रतिच्छेद है, ये भेद करके जानना, उसको कहते हैं ये विकल्प से जानना। बहुत अच्छा वाक्य। देखो विकल्प ने राग बिना मात्र जाने वो एनो स्वभाव छे तथा विकल्प पूर्वक एटले भेद पाड़ीने जाने एवो पण एनो स्वभाव छे। स्व परने भेद पाड़ीने जाणवुं एवो आत्मानो स्वभाव छे। एने स्व को स्व रीति से और पर को पर रीति से जानना ये आत्मा का ही स्वभाव है। आम ज्ञान स्वभावी आत्मा होवाथी ज्ञान छे ते आत्मा छे अने आत्मा छे ते ज्ञान छे एम अभेद थी वात छे। अभेद करिए ने वो तो ज्ञान, उसको यहाँ जिस ज्ञान परिणति की बात की है वो परिणति आत्मा से भिन्न वस्तु नहीं है, इसलिए अभेद से आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा ही कह दिया। माटे ज्ञान ने ज मोक्षनु कारण केवू योग्य छे। आहा, ज्ञान आत्मानो स्वभाव छे अने तेनु परिणमन एज मोक्षनु कारण छे। देखो यहाँ परिणति को ही अभेद से आत्मा कहा और उसी को मोक्ष का कारण कहा है। मोक्षनु कारण छे ते ज्ञाननु ज परिणमन छे, रागनु नहीं। समझानु काई? अब ये तो प्रवचन पूरा हो गया, अभी अगले की गाथा देखते हैं आगे की। 152 नंबर के। अथ ज्ञानम विधापयति। हवे आगममा पण ज्ञानने ज मोक्षनुं कारण कयुं छे एम बतावे छे। गाथा पढ़ेंगे अभी हम। परमर्थम् इदो अठिदो जो कुणदितवं वदंच धारेदि तं सौवं बालतवं बालवदम्बेन्ति सौवन।
परमार्थे त्वत्सितय करोति तपो व्रतं च धारयति तत्सर्वं बालतपो बालव्रतं ब्रुवन्ति सर्वज्ञा। रमार्थमा अनस्थित जे तपने करे व्रतने करे तगड़ूयते तप बाळने व्रत बा।
परमार्थमा अनस्थित जे तपने करे व्रतने धरे सघळूयते तप बाळने व्रत बाळ सर्वज्ञो कहे।
देखो यहाँ संस्कृत में दूसरे लाइन में ब्रुवंति सर्वज्ञाः चाहिए, सर्वज्ञः हुआ है। नीचे गाथार्थ में सर्वज्ञाः लिखा है,
ब्रुवंती लिखा है ना,
ब्रुवंती यानी कहते
अनेक,
हैं
अनेक वचन के लिए ब्रुवंती आया।
देखो यहाँ पर बात यह है कि इस गाथा में भी सर्वज्ञ का ही यहाँ मतलब उसके ही यहाँ साक्ष्य भी है। वो ऐसा कहते हैं ऐसा कहते हैं, मैं कहता हूँ ऐसा नहीं, क्योंकि ऊपर क्या लिखा कि आगममापन ज्ञान नेज मोक्षनो कारण कयूं छे। यानी आगम यानी है सर्वज्ञ के वाणी में भी उसको ऐसा कहा गया है। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अभी हम जानते हैं कि कुंदकुंदा आचार्य सिमंदर भगवान के समोचरण में जाके आए हैं, उन्होंने साक्षात उन्हें सुना भी था और वहाँ से आने के बाद उन्होंने ये रचना की है। इसलिए बार बार भगवान ऐसा कहते हैं, ऐसे अनेक गाथाओं में अपने को रेफरेंस मिलता है। तो क्या कहते हैं, परमार्थ माँ अनस्थित, यानी जिन्होंने अपने आत्मा का अनुभव नहीं किया है, परमार्थ यानी अपना त्रिकाली जो स्वभाव है, परम अर्थ ऐसा जो अपना स्वभाव है उसमें जो स्थित नहीं है, अने जे तपने करे अने व्रतने धरे सगुड़ते तप बाळने व्रत बाळ यानी बाल तप और बाल व्रत, ऐसा सर्वज्ञ कहते हैं। देखो गाथा पढ़े हो परमार्थे तू।
देखो देखो पहले गाथा में हमने क्या देखा था ना 151 में कि परमार्थ में जो स्थित है वो परमार्थ के लिए अलग अलग शब्द देखे, तो उसमें जो स्थित है वो निर्वाण को प्राप्त होता है। अब जो कह रहे हैं जो परमार्थ में अस्थित है, ये पहले गाथा के साथ इसके जोड़, ये परमार्थ में अस्थित, परमार्थ किसको कहना वो पहले गाथा में बता दिया, परमार्थ कहा शुद्ध कहा उसको केवली कहा ज्ञानी कहा मुनि कहा वगैरह वगैरह। तो अभी ऐसे परमार्थ में अस्थित यानी ज्ञान में अस्थित, ये कौन सा ज्ञान, अपने स्वभाव में स्थित ऐसा जो ज्ञान परिणति है उसमें जो नहीं रहते, ऐसी जो बात है उसकी यहाँ उस गाथा के साथ इसको जोड़ के उसको जानना। देखो अभी गाथा पढ़ो क्यों पढ़ेंगे
पढ़ो।
हाँ देखो परमार्थे तू एटले परमार्थमा, ये तू शब्द ने क्यों लगाया, परंतु जो परमात्मा नहीं स्थित है, पहली गाथा में बता दिया था जो परमार्थ में स्थित है वो मोक्ष का कारण है, परंतु जो परमार्थ में स्थित नहीं है ऐसा वो तू शब्द का उधर से उसके साथ जोड़ना। देखो परमार्थ है तू परमार्थमा अस्थित है इतले अस्थित यह एवो जे जीव तपह करोती तप करे छे, यानी जो अपने ज्ञान स्वभाव की एकाग्रता तो कुछ जानता नहीं है अपने स्वभाव की पहचान नहीं है, फिर भी तप कर रहा है। च तथा व्रतम धारयति, व्रत धारण करे छे, तत् सर्वम, पूरा उसका सभी, क्या बेकार गया क्या? क्या कहते? तेनाते सर्व तप अने व्रत ने सर्वज्ञः सर्वज्ञो बाल तपः, बाल तपने बाल व्रतम, बाल व्रत ब्रुवंती इतले कहे छे। क्या कहते हैं? जो परमार्थ में अस्थित है ने, जो अपने ज्ञान स्वभाव में एकाग्र नहीं होते हैं, जिन्होंने शुद्धोपयोग प्रकट नहीं किया है, जो ज्ञानी नहीं है, जिनको सच्चा मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ है, ऐसे जो जीव तप करते हैं, व्रत करते हैं, उनके समस्त व्रत तप, थोड़े थोड़े नहीं, वो बाल तप और बाल व्रत कहा, अज्ञानी के व्रत तप है, उससे थोड़ा पुण्य बंधेगा, परंतु वो मिथ्यात्व का बड़ा भारी पाप तो चलता ही रहता है, तो एकाध भव स्वर्ग का हो जाएगा, परंतु उन जीवों को भी उसी की महिमा आती है, और समाज के अन्य उसी को सराहना करते हैं कि ऐसा अच्छा तप कर रहे हैं, कितने व्रती है, कितने क्या है, बहुत भले है। परंतु सर्वज्ञ भगवान उसको बाल तप और बाल व्रत कहते हैं, बाल ने अज्ञानी के व्रत तप है वे। देखो अभी इसकी टीका पढ़ते, आगम मापन, ये आगम कहते किसको है? जो सर्वज्ञ भगवान के दिव्य ध्वनि के अनुसार जो गंधर्वों ने रचना की है और वो परंपरा से अभी तक चला आया रहे, उसको कहते हैं आगम। इसलिए जिसको हम आगम कहते हैं, वो भगवान की वाणी का कथन है, वो भगवान ने बताई हुई बात है। तो आगम मापन ज्ञान ने ज मोक्ष नु कारण फरमायू छे एम सिद्ध थाय छे, कारण के जे जीव परमार्थभूत ज्ञान थी रही छे। कौन सा ज्ञान थी रही? ये तो लौकिक ज्ञान नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो कोई साइंटिस्ट भी हो गए या कोई अन्य अन्य पोस्ट पर हो गए, बड़े बड़े डॉक्टर्स इंजीनियर्स हो गए, तो क्या वो ज्ञान से रहित है क्या? तो यहाँ कहा परमार्थ ज्ञान से जो रहित है, तेना अज्ञान पूर्वक करवामा आवेला व्रत तप आदि कर्मो आदि सभी भाव बंधना कारण होवाने लीधे ते कर्मों ने बाण एवी संज्ञा आपीने निषेध्या हुआ थी ज्ञान ज मोक्षनु कारण ठरे छे। उसको बाल तप बाल व्रत कहने से वो ये ख्याल आता है कि उसका निषेध हो रहा है, तो उसका निषेध है तो वो कौन सा सच्चा कारण है? तो कहते ज्ञान ही मोक्ष का सच्चा कारण है। भावार्थ, ज्ञान बिना करायला तप तथा व्रत ने सर्वज्ञ देवे बाल व्रत तप तथा बाल व्रत अर्थात अज्ञान तप तथा अज्ञान व्रत कहया छे, माटे मोक्षनु कारण ज्ञान छे। अब प्रवचन देखते हम मथाळू। हवे आगम मा पण ज्ञान ने ज मोक्षनु कारण कहयुं छे एम बतावे छे टीका उपरनु प्रवचन। आगम मा पण ज्ञान ने ज मोक्षनु कारण फरमाव्युं छे एम सिद्ध थाय छे। जो वीतराग अरिहंत देवनी दिव्य ध्वनि में जो उपदेश आयो ते आगम छे, लिखा है ना, आगम कहना किसको? जो सर्वज्ञ भगवान की जो समोषण में दिव्य ध्वनि खीरी थी उसी को आगम कहा है। ए दिव्य ध्वनि में एटले आगम में ज्ञान ने ज मोक्षनु कारण फरमाव्यु छे एम कहे छे। बनारसी विलास में शारदाष्टक में आवे छे ने के मुख ओंकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे रची आगम उपदेश भविक जीव संशय निवारे। भगवानी ओम ध्वनि सांभळी ने गणधर देवोए आगम नी रचना करी छे। अर्थ गणधर विचारे ने उसका अर्थ समझकर रची आगम आगम की रचना करी। आहा, भगवानी वाणी मां जे आव्यू तेनु आगम मां कथन छे, ए आगम मां पण ज्ञान ने ज मोक्षनु कारण फरमायू छे। हाँ, अध्यात्म कुछ अलग नहीं है, आगम का ही वो अंग है। हाँ, वो परमागम का ही, परमागम का है ना, उसको गंधर्वों ने उसको अध्यात्म तो बताया, वो तो मूलभूत है उसका, यानी आगम और अध्यात्म ऐसा यहाँ वो भेद नहीं किया है। यह आगम का ही अंग है अध्यात्म। जो छह द्रव्यों संबंधी पूरी जानकारी उसको आगम कहा है, और उसमें आत्मा की बात है वो भी आगम का ही अंग है। यानी अध्यात्म नाम का कोई सेपरेट शास्त्रों की रचना है और आगम कोई अन्य, ऐसी बात नहीं। जो आगम जिसको यहाँ कह रहे आगम, सर्वज्ञ की वाणी को यहाँ आगम कहा है, उसी में अध्यात्म भी गर्भित है।
देखो आपका जो प्रश्न है उसमें अध्यात्म यानी जिसमें सिर्फ आत्मा को ही विशेष मुख्य करके कथन किया है, जैसे ये समय सार हम पढ़ रहे हैं, दूसरा हम नियम सार पढ़ चुके हैं, यहाँ विशेष रूप से तो अन्य बातों को गौण करते हुए आत्मा की ही बात विशेषता प्रदान करके कही है, उसे अध्यात्म ग्रंथ कहेंगे, अध्यात्म शास्त्र कहेंगे। और कई ऐसे भी ग्रंथ है कि आत्मा के बारे में भी बताया जाता है, अन्य भी बारे में बताया जाता है, वे दोनों मिक्सचर है। हाँ, आचार्य रचना करते हैं, आगम ऐसे करते नहीं है। ये आगम यानी जिनेन्द्र भगवान ने बात बताई तो उन्होंने क्या सिर्फ आत्मा के बारे में बताई या अन्य द्रव्यों के बारे में भी बताई? सभ्य बारे में बताई, तो सभ्य बताई जिसमें आगम को मतलब आत्मा को मुख्य करके जो कथन किया है, जैसे ये समय सार शास्त्र है वहाँ विशेष। अरे नियम सार में भी क्या कहते हैं, आत्मा को ही मुख्य करके उधर कथन है। तो इनको हम आंख बंद करके कैसे कहते पूरे ग्रंथ आध्यात्मिक है, लेकिन अभी तत्वार सूत्र में जो सभी बातें हैं तो उसमें अध्यात्म और आगम दोनों का मिक्सचर है। द्रव्य संग्रह में सभी बातें हैं, यानी ऐसा हम क्लासीफाई नहीं कर सकते ये अध्यात्म ग्रंथ है और ये आगम ग्रंथ है। वैसे अध्यात्म ग्रंथ भी है कुछ टिपिकल जुदे, हाँ, लेकिन अभी क्या है कि अध्यात्म की बात भी किसने बताई? दिव्य ध्वनि में आई। आगम की बात भी किस में आई? दिव्य ध्वनि में आई। तो इस दिव्य ध्वनि को ही आगम कहेंगे आप, तो उसमें अध्यात्म एक उसका पार्ट है।
ऐसा नहीं कि अध्यात्म वो आचार्यों ने बनाया और आगम है वो पहले गणधरों ने, क्योंकि वो आगम से ही ओरिजिनेट हुआ है। ये अध्यात्म के अलग ग्रंथ बनाए हैं, किसी विषय को लेके उसके ग्रंथ अलग बने, परंतु मूल आगम ये जो अध्यात्म भी वो गणधरों ने ही रचित है ये सब कुछ रचना। नहीं तो ऐसा मानना पड़ेगा कि भगवान ने तो नहीं बताया और ये आचार्यों ने अपने मन से, ऐसा बात, ऐसी बात नहीं है।
ख्याल भी आए डॉक्टर साहब?
यहाँ आगम यानी दिव्य ध्वनि के आधार से जो ग्रंथ रचना हुई है उस किसी विशेष शास्त्र का नाम आगम नहीं है, भगवान की दिव्य ध्वनि को यहाँ आगम कहा है। ये आगम अपन ज्ञान निज मोक्ष नु कारण फरमायु छे। कोई एम कहे आ व्रत तप इत्यादि शुभाचरण पण मोक्ष नु कारण छे तो कहे छे ना। कोई कहे ना, यह भी लगाए ना, आगम मां एम कहू नथी। ये जो कोई कह रहे वो अपने मति कल्पना से कह रहे, हमें तो आगम का आधार चाहिए। आगम में तो भगवान ने बताया ये कोई मोक्ष का कारण है ही नहीं है। हाँ हाँ, वो तो ये तो कुनकुंदाचार्य ने लिखा है, तो उस समय भी अज्ञानी या कोई शिथिलाचारी अन्य मति वाले लोग थे कि नहीं? वो तो श्वेतांबर मत भी स्थापित हुआ था और अन्य मत भी तो उससे भी पहले हुए थे ना।
देखो देखो, अभी मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। ये श्वेतांबर मत की स्थापना होने के बाद कुंदकुंदा आचार्य हुए, ऐसा नहीं हम मानेंगे तो आप पढ़ लेना कौन सा अष्टपाहुड़। तो अष्टपाहुड़ में तो मुनियों के बारे में ही इतनी बड़ी सटीक टीका की है, तो उसमें मुनियों में भी ये जो शिथिलाचार चल रहा था उसका उन्होंने बहुत अच्छा दिग्दर्शन करा है उसमें। और ये बात अपने को विशेष रूप से मोक्ष मार्ग प्रकाशक के छठे अधिकार में दिखाई देता है कि वहां तो उन्होंने कितने उद्धरण दिए हैं अष्टपौड़ ग्रंथ के, यानी उस समय भी मुनियों में भी सब गड़बड़ी थी। इसलिए तो ये दिगंबर और श्वेतांबर दो संप्रदाय होने का कारण ये है कि मुनियों में शिथिलाचार चालू हो गया और वो अपना शिथिलाचार बराबर है ये एस्टेब्लिश करने के सर्वज्ञ को ही स्वरूप बदली दिया उन्होंने।
ये सभी कालों में ऐसा चलेगा, आदिनाथ के काल में नहीं था? आदिनाथ के साथ इतने हजारों मुनियों ने दीक्षा ले ली, पता नहीं था मुनि धर्म क्या होता है।
पर उस समय श्वेतांबर मत नहीं था।
हाँ, श्वेतांबर मत तो अभी महावीर के बाद। वो भद्रबाहु के बाद ये बात, जब दुष्काल आया था, दुकाल आया था, वो तो पहले सुनाया था ना, बहुत बड़ी स्टोरी पुस्तक में से सुनाई थी।
कोई बात नहीं, अभी ये आप दूसरी बात बताना चाहते हैं कि आदिनाथ भगवान के समय में भी मिथ्या मत चल रहे थे, एक दो नहीं 363 पाखंडी मत चलाए थे। किसने? अरे ये तुम्हारे 24वें तीर्थंकर बने उसी जीव ने। ये तो भाई ये हुंडा अवसर पर निकाल है ना, तो इसमें तो ऐसी मजाक चलेगी।
अभी अन्य मति की विशेषता इतनी है, ये हुंडा अवसर पीने में ज्यादा होता है, अन्य कालों में इतना नहीं होता। हाँ, यानी मिथ्या तो होते हैं मत, परंतु ऐसी बातें इतनी नहीं होती है। ये अन्य देव देवताओं का सारा जो है ना, इतना फैशन चल रही है। हाँ, देखो क्या कहते हैं, कि कोई एम कहे कि आ व्रत तप इत्यादि शुभाचरण पण मोक्षनु कारण छे, तो कहे छे ना आगम मा एम कह्यु नथी। वीतराग परमेश्वर अनंता तीर्थंकरोनी दिव्य ध्वनि अनुसार रचेला जे आगम छे, एक दो तीर्थंकर नहीं अनंता तीर्थंकर। तो अभी हमारे गणधर को क्या पता पहले तीर्थंकरों ने क्या बताया, तो सभी तीर्थंकरों का उपदेश तो वैसा ही होगा, एक ही होगा। जे आगम छे तेमा तो ज्ञान एटले आत्माने ज मोक्षनु कारण कह्युं छे, व्रत तप आदिना राग ने मोक्ष मार्ग कहे ते वीतरागना आगम नहीं। वो ऐसे जिसमें निरूपण होता है कि व्रत तप करो उससे कल्याण होगा, मोक्ष मार्ग शुरू होगा, तुम्हारी निर्जरा होगी, तो कहते वो वीतराग के आगम ही नहीं है, वो किसी रागी जीव ने रचना की हुई है। एक पंडित नो कोई सामयिक सामयिक यानी वो मैगजीन कोई दई है, मासिक पाक्षिक जो कोई है, सामयिक मा मोटो लेख आयो छे के आ व्यवहार व्रत अने तप बधा संवर निर्जराना कारण छे, निर्जर हुआ है निर्जराना कारण छे। अरे एने बिचारा ने एम ऊंधू बैठू छे एटले शू थाय, देखो उसकी भी करुणा कर रहे हैं। अहीं तो कहे छे देखो बहुतों की मान्यता ऐसी है, वो तो व्रत तप करने से संवर निर्जरा हो जाती है, बहुत निर्जरा हो जाती है, हम कर्मों को खिपा रहे ऐसा मानते हैं, उपवास करते हैं और हमारे कर्म खट जाते। आप भी पहले मानते थे ऐसे ही सुना था ना। हाँ, क्या कहे, ये तो अभी ऐसी प्ररूपना चल रही उनके उनके आगम, जिसको तथा कथित आगम है, जिसको वे आगम मानते उसमें ऐसी ऐसी प्ररूपना है। इसलिए ऊपर क्या कहा, व्रत तब इसको राग को मोक्ष मार्ग कहते हैं, वो वीतराग के आगम ही नहीं है, वो रागी जीवों ने की हुई रचना है। तो यहाँ कहते हैं अरे इन्हें बिचारा ने मुंदू बैठू छे एटले शू थाय, अहीं तो कहे छे सत्य वो आत्मा जेने हाथ आवे एटले दृष्टि में आवे एने मोक्षनो मार्ग थाय, बाकी रागना परिणाम तो अनंत काल थया पण ए वडे हजु मोक्ष मार्ग थयो नथी अने थाय पण नहीं। इसीलिए तो आता ना अनंत वार मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रहवेग उपजायो, यानी द्रव्य लिंग धारण करके मिथ्यात्व अवस्था में वो ग्रहवेग तक गया, परंतु कुछ भी लाभ नहीं हुआ, आत्मा ज्ञान हुआ ही नहीं। आ सत्यवाद छे, कोई माने तो माने, सत्य ने संख्या नी क्या जरूर छे, लोग कहते ना आप भी ऐसा मानो, थोड़ा ऐसा कहो तो बहुत आपके फॉलोअर हो जाएंगे, ऐसा बताने वाले होते ना कि आप जैनी कितने हैं गिने चुने, और उसमें भी वो दिगंबर कितने हैं, और वो दिगंबर में भी ये सत्य मान्यता वाले कितने हैं, तो इतने गिने चुने तो आप थोड़ा थोड़ा थोड़े ब्रॉड माइंडेड हो जाओ कहते हैं। ये ब्रॉड माइंडेडनेस नहीं है, ये मिथ्या तो है। देखो कोई माने तो माने, सतने संख्या नी क्या जरूर छे, घना माने तो साचू ने थोड़ा माने तो साचू नहीं, एवी सतने संख्या नी अपेक्षा छे नहीं, क्योंकि सत्य तो सत्य है, तीनों काल वो सत्य ही रहेगा। सत तो त्रणे है, आ गई बात, सत तो त्रणे काल स्वयं आप मेरे सत छे, गाथा में पण आव्यु ने કે બેનતી સંવનનું સર્વજ્ઞ દેવો આમ કહે છે, બ્રુવંતી આયા હતા ને સંસ્કૃત મેં, એને કહેતે હૈ એક નહીં અનેક સર્વજ્ઞાહ શબ્દ આયા હતા, હા વીતરાગ સર્વજ્ઞ દેવોની વાણીમાં એટલે આગમમાં, જ્ઞાનને જ એટલે શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માને જ મોક્ષનું કારણ ફરમાવ્યું છે। ભાઈ કોઈ પોતાની મતિકલ્પનાથી ઊંધા અર્થ કાઢે અને વ્રત તપ આદિના રાગને મોક્ષનું કારણ કહે તો તે કંઈ આગમના અર્થ નથી, વો આગમ કે વાક્ય નહીં હે, આગમ મેં સે નિકલેલી બાત નહીં હો, આગમમાં તો આ ભર્યું છે કે અંદર વિકલ્પથી પાર શુદ્ધ ચિદાનંદ ઘન સ્વરૂપ પરમાત્મ તત્વ છે, જેને અહીં જ્ઞાન શબ્દ વડે કીધું છે તેનું અંતઃપરિણમન, જે જ્ઞાન ક્યાં કહેતે, જો શુદ્ધ ચિદાનંદ ઘન સ્વરૂપ પરમાત્મા તત્વ જીસકો હમ નિજ શુદ્ધાત્મા કહેતે હૈ, ભગવાન આત્મા કહેતે હૈ, ચિદાનંદ ઘન સ્વરૂપ એસા કહેતે હૈ, ઉસકા અંતઃપરિણમન એને ઉસકે જ્ઞાન કી અપને આપ મે જો લીનતા હૈ, જે જ્ઞાન તે જ્ઞાનને જ મોક્ષનો માર્ગ કહ્યો છે, કોણ સા યે જો સમ્યક પરિણમને વાલા જો જ્ઞાન હૈ જીસકો હમ શુદ્ધોપયોગ ભી કહેતે હૈ, ઉસી કો યહાં મોક્ષ કા કારણ મોક્ષ કા માર્ગ કહા, આ સમ્યક એકાંત છે। સમ્યક યાની વો ત્રિવાર સત્ય, યે બાત થોડા રાગ સે ભી હોતા હોગા ઓર થોડા જ્ઞાન સે ભી હોતા હોગા એસી બાત નહીં હૈ, મોક્ષનો માર્ગ કથંચિત જ્ઞાનથી થાય અને કથંચિત રાગથી થાય એ અનેકાંત નથી, એ તો મિથ્યા અનેકાંત છે, એને જ્ઞાન સે હી હોગા, રાગ સે બિલકુલ નહીં હોગા, એ અનેકાંત હૈ। ઓર અન્યમતી અરે હમારા જૈન ધર્મ તો અનેકાંત હૈ, વો તો પતા હી નહીં અનેકાંત કિસકો કહેના, ઇસસે ભી હોતા હૈ ઉસસે ભી હોતા હૈ, વો અનેકાંત માન લેતે હૈ। ઓર યે અનેકાંત કી પરિભાષા હમારે જૈની ભાઈ હી કહેતે હૈ, હમારી કોઈ રિશ્તેદાર કરતે હૈ ના, તો દુઃખ હો જાતા હૈ, ક્યા કરે। અહીં તો જ્ઞાન ને જ જ લગાય આગે, જ્ઞાન ને જ મોક્ષનું કારણ કહીને સમ્યક એકાંત કર્યું છે, મતલબ કે મોક્ષનો માર્ગ છે તે એક જ છે અને તે સ્વભાવના આલંબન એટલે એકાગ્રતા રૂપ છે। જૈન પરમેશ્વરના આગમમાં આ આવ્યું છે, ક્યાં કહેતે, એને સ્વભાવ કા અવલંબન જો હૈ, સ્વભાવ મેં એકાગ્રતા હૈ, વહી મોક્ષ કા કારણ હૈ, ઓર વહી કરને જૈસા કાર્ય હૈ, યાની હમ ભી શાસ્ત્ર પઢતે હૈ તો ઉસકા તાત્પર્ય ક્યા હૈ, ઉસમે સે તો હમ સ્વભાવ કી કો સમજતે હૈ, સ્વભાવ કી મહિમા આતી હૈ, ઓર હમ અપને સ્વભાવ મેં લીન હો જાવે, અંતર્મુખ હો જાવે તો હી હમે વો માર્ગ પ્રકટ હોને વાલા હૈ। હવે કહે છે જ્ઞાનને જ મોક્ષનું કારણ ફરમાવ્યું છે, કારણ કે જે જીવ પરમાર્થભૂત જ્ઞાનથી રહી છે, ઇસ જ્ઞાન કો કૌન સી જ્ઞાન કહા, યે પરમાર્થભૂત જ્ઞાન, એક પૂરી દુનિયા કો જાનતા રહે ઓર હમ જ્ઞાતા દૃષ્ટા હૈ, ઉસ જ્ઞાન કી બાત નહીં ચલ રહી હૈ, અપના પરાયા ભેદ પતા હી નહીં હૈ, ઓર બસ રુચિપૂર્વક સબકો જાનતા રહેતા હૈ, ઓર કહેતા હૈ હમ તો જાનતે હૈ, સબકો જાનતે હૈ, જો જો હો રહા હૈ ઉસકો જાનતે હૈ, ઉસકી બાત યહાં નહીં હૈ, જાનને વાલે કો નહીં જાનતે ઓર હોતે હુએ કો જાનતે ઉસકી બાત વો સચ્ચા જ્ઞાન નહીં હૈ। દેખો ક્યા કહેતે, કે જે જીવ પરમાર્થભૂત જ્ઞાનથી રહી છે તેના અજ્ઞાનપૂર્વક કરવામાં આવેલા વ્રત તપાદિક કર્મો બંધના કારણ હોવાને લીધે તે કર્મોને બાળ એવી સંજ્ઞા આપીને કર્મ એને વ્રત તપ યા ઇસકો કર્મ કહા ઉસકો બાળ વ્રત ઓર બાળ તપ કહ્યા આપીને નિષેધ્યા હોવાથી જ્ઞાન જ મોક્ષનું કારણ ઠરે છે. શું કહે છે આ? જે જીવ પરમ પદાર્થ પ્રભુ આત્માના જ્ઞાન શ્રદ્ધાંથી રહિત છે તેના અજ્ઞાનપૂર્વક કરવામાં આવેલા વ્રત તપ આદિ કર્મો બંધના કારણ છે. ક્યુકી જ્ઞાન કા એકાગ્રતા કી કોઈ બાત હી નહીં હે ઓર બસ વ્રત ઓર તપ કરને મે હી દોનો ભી આવાજ આ રહી. તો શું જ્ઞાનીના કરવામાં આવેલા વ્રત તપ આદિ કર્મો મોક્ષના કારણ છે? દેખો પ્રશ્ન ક્યા હૈ, વો અજ્ઞાની કે બલ જો તપ હૈ વ્રત હૈ ઉસસે તો મોક્ષ નહીં હોગા, પરંતુ જ્ઞાની કે વ્રત તપ સે તો હોગા કે નહીં હોગા? તો ઉસકી બાત કહેતે હૈ ના, એમ નથી. આ તો મિથ્યા દ્રષ્ટિના વ્રત તપ આદિ કર્મ અજ્ઞાનપૂર્વક હોય છે એમ વાત છે. જ્ઞાની કે વ્રત તપ કો બાલ વ્રત બાલ તપ નહીં કહા હૈ, ઉસકો તો વ્રત તપ ઇતના કહેંગે. જ્ઞાની તો વ્રત તપ આદિ કર્મોનો કરતા થતો જ નથી, વે તો હોતે હૈ, વો કરને વાલા નહીં હૈ, ઉસકો તો વો જાન રહા હૈ. તથાપી અસ્થિરતાનો કિંચિત જે રાગ તેને હોય છે તે બંધનું કારણ બને છે મોક્ષનું નહીં. જ્ઞાની કે જો વ્રત તપ હૈ ઉસકે કરને કે જો વિકલ્પ હૈ વો રાગ ભાવ હૈ ને શુભ ભાવ હૈ વો ભી બંધ કા કારણ હૈ, વો ઉસકે આતે હૈ ઉસકા ઉસકો સ્વામીપના નહીં હૈ. કલશ ટીકા કલશ 110માં આવે છે, કોઈ ભ્રાંતિ કરશે કે એને કોઈ એસા ગલત માનેગા કે મિથ્યા દ્રષ્ટિનું યતિપણું ક્રિયારૂપ છે તે બંધનું કારણ છે. ક્યાં કહેતે અભી જો ઉપર ચર્ચા હુઈ ઉસી કો ફિર બતા રહે. કલશ ટીકા મેં ભી લિખા થા કે મિથ્યા દ્રષ્ટિ જો કોઈ મુનિ અવસ્થા ધારણ કરતા હૈ ઓર જો કુછ ક્રિયાએ વગેરે કરતા હૈ ક્રિયારૂપ ચારિત્ર પાલતા હૈ વો તો બંધ કા કારણ હૈ, પણ સમ્યક દ્રષ્ટિનું જે શુભ ક્રિયારૂપ યતિપણું તે મોક્ષનું કારણ છે એસા કોઈ કહેગા. ઇસકી બાત ચલ રહી હૈ કે જો સમ્યક દ્રષ્ટિ હૈ ભાવલિંગી સંત હૈ તો ઉનકે ભી શુભ ક્રિયારૂપ યતિપણું તો ઉનકે હોતે હૈ, ક્યુંકી હમ દેખતે છઠા સાતવા ગુણસ્થાન હૈ મુનિયોં કા, તો વહાં 28 મૂળ ગુણ પાલન કરને કે ભાવ ભી હોતે વૈસી ક્રિયા ભી ચલ રહી ઉનકી, તો વો ભી મુક્તિ કા કારણ હોગા એસા કોઈ કહેગા. તો કહેતે કારણ કે અનુભવ જ્ઞાન તથા દયા વ્રત તપ સંયમ રૂપ ક્રિયા બંને મળીને જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મનો ક્ષય કરે છે. એ કહેને વાલી કે કોઈ કહે ઉસકી બાત ચલ રહી હા. આવી પ્રતીતિ કેટલાક અજ્ઞાની જીવો કરે છે. કલશ ટીકા કે ઉદાહરણ પૂરા ચલ રહા હૈ.
યે અભી હમ 104 તક આયે હૈ, કલશ અપને 104 હુએ હૈ, અભી 4-6 જાને કે બાદ વો 110 નંબર કા કલશ આને વાલા હૈ, ઉસકી બાદ અભી અપને કો સમજાને.
તો ઉસ કલશ કી બાત ક્યાં સમાધાન આમ છે કે યો કલશ મે એસા બતાય. કલશ ટીકા મે ક્યાં સમાધાન કરતે હૈ, જેટલી શુભ અશુભ ક્રિયા બહિર્જલ્પ રૂપ વિકલ્પ. એ જલ્પ કિસકો કહેના, બહિર્જલ્પ મેં એસા હું વૈસા હું, એ જો હમ કહેતે હૈ ને ભાષા રૂપ વચન રૂપ જો કુછ હૈ ઉસકો જલ્પ કહેતે. હમ જોર સે બોલતે હૈ મુખ સે બોલતે વો બહિર્જલ્પ કહેલાયેંગે. બહિર્જલ્પ રૂપ વિકલ્પ અથવા અંતરજલ્પ રૂપ એને મન હી મન મેં કુછ વચનાત્મક અપને વિચાર ચલતે હૈ ઉસકો અંતરજલ્પ કહેતે. અથવા દ્રવ્યોના વિચાર રૂપ અથવા શુદ્ધ સ્વરૂપનો વિચાર ઇત્યાદિ સમસ્ત એ હમ શુદ્ધ સ્વરૂપ સંબંધી જો વિચાર કર રહે વિકલ્પાત્મક જો ચલ રહી બાત વો સભી કર્મબંધનું કારણ છે. આવી ક્રિયાનો આવો જ સ્વભાવ છે. સમ્ય દ્રષ્ટિ મિથ્યા દ્રષ્ટિનો એવો ભેદ તો કાંઈ નથી, વો તો હૈ તો શુભ ભાવ, વો તો બંધ કે હી કારણ હોગે, समय दृष्टि के है इसलिए बंधक के कारण नहीं और मिथ्या दृष्टि वाले के बंधक का कारण है ऐसा है नहीं। एवं कर्तृत्व थी एटले कृत्य थी एवो बंध छे। शुद्ध स्वरूप परिणमन मात्र थी मोक्ष छे। क्या कहते हैं? शुद्ध स्वरूप परिणमन जो है उसी से मोक्ष होगा। बाकी बात कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत होरो।